वसुदेवाय भागवतम चौथा स्कंद 31वां अध्याय 18वां श्लोक तेनैकमात्मानम् अशेष देहिना कालम् प्रधानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा भजध्वम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण हैं। चूंकि वे भौतिक प्रवाहों से विलग हैं, अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं और प्रकृति के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उनसे अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य, वैदिक परिगणनाओं के अनुसार सृष्टि के तीन कारण हैं, काल, अव्यव तथा सृष्टिकर्ता। ये तीनों मिलकर तृतयात्मक अर्थात तीन कारण कहलाते हैं। इन्हीं तीनों कारणों से इस संसार को सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ये समस्त कारण भगवान में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, सर्व कारण कारणम। इसीलिए नारद मुनि प्रचेताओं को प्रत्यक्ष कारण श्री भगवान की पूजा करने का उपदेश देते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वृक्ष की जड़ सींचने से वृक्ष के सारे अंग अनुप्राणित होते हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार मनुष्य को सीधे भक्ति में लगना चाहिए, इसमें सारा पुण्य कर्म आ जाता है। चैतन्य चरितामृत का कथन है, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। जब कोई भक्ति में परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करता है तो वह स्वतः अन्य सारे पुण्य कर्म करता है। इस श्लोक में स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे सब भगवान की ही आध्यात्मिक शक्ति से प्रवाहित होते हैं। जो लोग इस ज्ञान में पटु हैं, वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध भगवान से न हो। कृष्णा, नारद मुनि प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजे हैं और वे निकटवर्ती और सुदूर कारण हैं। और ये सृष्टि के निकटवर्ती और सुदूर कारण होने के बावजूद वो इस सृष्टि से विलग हैं और हर अवस्था में वो इस प्रकृति के स्वामी हैं। इसलिए हे प्रचेतागण, नारद मुनि कह रहे हैं, सीधे आप भगवान की भक्ति में लग जाओ। इसका मतलब है कि भक्ति ही हमारे सारे क्रियाओं का अंत है, सारे क्रियाओं की परिपूर्णता है, सारे ज्ञान की, सारे योगाभ्यास की, सारे तपस्या की, सारे वैराग्य की, सारे धन और ऐश्वर्य की, बुद्धि की, शिक्षण की, ये परिपूर्णता है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे पास है, इन सब चीजों की परिपूर्णता यही है कि हम सीधे भगवान की सेवा में लग जाए। यहाँ पर नारद मुनि आदेश दे रहे हैं भजध्वम अद्धा। अद्धा मतलब सीधे, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं के माध्यम से, या हम सृष्टि की पूजा करें, किसी भूत प्रेत की पूजा करें, नहीं, सीधे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी गीता में घोषणा करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। वो कहते हैं कि मैं सारे सृष्टि का उद्गम हूं, इसलिए मुझे सबको मेरी भक्ति करनी चाहिए। इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। ये जानते हुए कि मैं सारे सृष्टि का उद्गम हूं, हे अर्जुन, तुम्हें भक्ति भाव से मेरी सेवा में लग जाना चाहिए, डायरेक्ट मेरी सेवा करनी चाहिए, सीधे। इसका मतलब है, जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, तब क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। यही सबसे सीधी बात है, कोई समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अभी इतने सारे साधु हैं, अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं, अलग अलग तरह के योगाभ्यास करते हैं, कोई लोग नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, व्याकरण का पढ़ाई करके शब्दों का तोड़ मोड़ करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से हर एक श्लोक को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, इनका ये सब जो है निष्फल है। क्या फायदा है, क्योंकि इन सब चीजों का उद्देश्य ही है भगवान की भक्ति करना। इसलिए शास्त्र में भी बताया गया है, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि को अंदर भी दर्शन कर रहा है और हर जगह बाहर हरि को देख रहा है, भगवान कृष्ण को, तो फिर उसे तपस्या करने की क्या जरूरत है, क्योंकि तपस्या का फल तो उसने प्राप्त कर लिया। वो भगवान को सब जगह देख रहा है, भगवान का सदैव स्मरण कर रहा है, उसके हृदय में भगवान के कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, तो तपस्या करने की क्या जरूरत उसको। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे भगवान को नहीं देख पा रहा है, उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो फिर ऐसी तपस्या करने से क्या फायदा। केवल तपस्या करने से तो हमें भक्ति नहीं मिलेगी, इस विषय में आज दोपहर में हमें ज्यादा चर्चा करेंगे। तो अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, केवल तपस्या कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं ऐसे तपस्या से, तो ऐसे व्यक्ति को तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, उसको भी तपस्या करने की जरूरित नहीं है। आराध्य तो यदि हरि तपसा तथा किम, अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि का भजन कर रहा है, तो क्या तपस्या करने की जरूरत है, भजन ही तो सब कुछ है। 24 घंटे अगर कोई भगवान के नाम कीर्तन में लग जाए, तो फिर क्या तपस्या करना है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता, कितना भी तपस्या करे, जब तक वो भगवान का भजन नहीं करे, उसका तपस्या विफल है, निष्फल है। इसलिए नारद मुनि यहां बता रहे हैं, सीधे भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवान सृष्टि के मूल हैं और सृष्टि ही ये सारा वृक्ष है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सृष्टि का मूल क्या है, यह ढूंढ निकालना। जैसे वृक्ष का मूल कहां है, जब वृक्ष के मूल को ढूंढते हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी देते हैं मूल को। ठीक उसी तरह से जब हम सारे सृष्टि के मूल को जान जाते हैं कि इसका मूल है भगवान श्री कृष्ण, तो जान गए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। वृंदावन के निवासी, उनको ये नहीं मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, नायक है, उनको नहीं मालूम था। और कई बार जब लोगों ने उनको बताने का प्रयास किया, उन्होंने न तो विश्वास किया और न ही उसकी परवाह की। हो सकता है आप बोल सकते हैं ये कोई हो, लेकिन हमारे लिए तो ये केवल कृष्ण है, हमारा मित्र है, हमारा बच्चा है, हमारे गांव का छोटा लड़का है। आपके लिए हो सकता है सृष्टिकर्ता हो, जो भी हो। तो ब्रजवासी, उनके हृदय में इतनी तीव्र भक्ति थी, भक्ति के चरम सीमा तक पहुंच गए थे, इसलिए उनके लिए ये सब सृष्टि का ज्ञान या तपस्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इन्होंने पूर्व जन्मों में सारी तपस्या, सारे ज्ञान का अर्जन सब कुछ कर दिया था, इसलिए अभी वो केवल शुद्ध भक्ति कर रहे थे, भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहे थे। लेकिन हम उस अवस्था में नहीं है, इसलिए हमें मूल क्या है, मूल भगवान है, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, और धीरे 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 से हमारी सेवा की तीव्रता को बढ़ाने के लिए। यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान ही सारे सृष्टि के निकटवर्ती और सुदूर कारण है। निकटवर्ती मतलब जो एकदम बाहरी रूप से बाहरी कारण लगता है किसी चीज का, और उसके पीछे भी एक कोई कारण होता है। जैसे कभी कभी चावल के कोई गोनी में से कभी कभी एक हमें बिच्छू निकलते हुए दिखाई पड़ता है, या कोई कीड़े आते हैं बाहर से उस गोनी के अंदर से, तो बाहरी रूप से देखा जाए तो वो चावल का गोनी जो है वो बिच्छू का या कीड़ों का कारण है, लेकिन इसके पीछे भी और कोई कारण है ना। वो बिच्छू का भी कोई माता पिता है ना, वो तो यूं ही टपक नहीं आए, चावल ने उसे उत्पन्न नहीं किया, वो तो केवल चावल क्या है, एक निमित्त कारण है, बाहरी कारण है, लेकिन उसके पीछे तो और कुछ कारण है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे लगता है कि बच्चा मां से जन्म लेता है, लेकिन मां के पीछे भी एक और कारण है, वो है पिता। तो ठीक इसी प्रकार से ये सारे जो 84 लाख योनि हैं इस सृष्टि में, लगता है कि ये प्रकृति से आ रहे हैं, ये शरीर तो हमारा प्रकृति का बनाया हुआ है, जड़ पदार्थों का, लेकिन प्रकृति के पीछे भी एक कारण है। प्रकृति केवल निमित्त कारण है, वो केवल बाहरी कारण है, इसके पीछे एक सुदूर कारण है, एक मूल कारण है, और वो है भगवान। तो प्रकृति सारे 84 लाख योनियों के माता के समान है, और भगवान सारे 84 लाख योनियों के पिता के समान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तियाः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम् बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, मैं सारे 84 लाख योनियों का बीज प्रदाता हूं, मैं पिता हूं, अहम् बीज प्रदः पिता। जैसे पिता माता में बीज प्रदान करता है और फिर वो बीज से संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में जीव रूपी बीज, आत्मा रूपी बीज प्रदान करते हैं प्रकृति में अपने दृष्टि मात्र से। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, केवल दृष्टि मात्र में वो प्रकृति को गर्भवती कर सकते हैं, और अपने दृष्टि से क्या होता है, सारी आत्माएं उनको शरीर मिलने लगते हैं प्रकृति में। इसलिए भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदाता हूं, मैं पिता हूं, क्योंकि पिता ही बीज प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हम सबके पिता हैं, प्रकृति हमारी माता है। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, ऐसे कई दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि सब कुछ, ये सारा जीवन जो है यहाँ, सारे प्राणी, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति के पीछे कोई और कारण नहीं है। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि दो तरह के कारण होते हैं हर चीज के लिए। एक तो है निमित्त कारण, जिसको यहां निकटवर्ती कारण बताया गया, निकट का कारण जो बाहरी दृष्टि से लगता है कि ये कारण है, लेकिन हर एक चीज के लिए पीछे भी कोई कारण है, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक मूल कारण है। हर एक चीज में आप देखिए, पेट में तकलीफ हो गई, पेट में तकलीफ क्यों हुई, हमने कुछ खा लिया, तो भोजन वो हमारे पेट दर्द का निमित्त कारण है, लेकिन इसके पीछे भी और एक कारण। भोजन तो हम रोज खाते हैं, रोज पेट दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि उस भोजन के अंदर शायद कोई कीटाणु थे, कोई कुछ जंतु थे, उसकी वजह से। तो मूल कारण क्या है, वो जंतु। उसके भी मूल कारण और है, वो जंतु हमारे भोजन में क्यों आए, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए थे तो हमें कर्मों का फल मिला है। तो हमारा कर्म जो है वो इसके लिए एक पीछे का कारण है। तो ऐसे देखा जाए तो जो भी कुछ होता है यह सृष्टि में, उसके पीछे कोई कारण होता है, केवल बाहरी कारण को हमें देखना नहीं चाहिए। तो पीछे के कारण, जो मूल कारण को देखने के लिए ज्ञान चाहिए। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक आजकल केवल बाहरी कारण देखते हैं, उनको वो सूक्ष्म ज्ञान नहीं है कि बाहरी कारण के पीछे भी कुछ है, उसको देखें। एक कुम्हार होता है, कुम्हार अपने चक्की पे, चक्र पे वो घुमा के वो मिट्टी से वो मटके बनाता है। अब अगर कोई व्यक्ति बोले कि ये मिट्टी ही ये मटकों का कारण है, तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, आखिर मटके तो मिट्टी से ही बने हैं। लेकिन मिट्टी का परिवर्तन मटके में करने के लिए कोई कुम्हार तो चाहिए ना, कोई व्यक्ति चाहिए। क्या खुद ब खुद मिट्टी मटका बन गया? नहीं, उस चक्र को घुमाना, फिर उसको एक आकार देना, ये कला है, जो कुम्हार के हाथ की कला है, उससे वो मटका बना है। और अगर हम और आप करते हैं, जिनको ये मटका बना नहीं आता, तो मटके के बजाय न जाने और कुछ हो जाता। तो एक बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि के पीछे कला है, वो कला से वो बना है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां ये जो प्रकृति है, ये भौतिक शक्ति है, वो मिट्टी के बराबर है। और जो भी यहां अलग अलग चीजें हम देखते हैं, पहाड़ हैं, सागर हैं, ये 84 लाख योनियों हैं, शरीर हैं, वो सब मटके के बराबर है। तो इनको बनाने वाला कौन, कुम्हार कौन है? कुम्हार तो कोई चाहिए, वो है भगवान। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, ये भूमि आप नलवायु खम मनोबुद्धरे वच अहंकार इत्यम में बिन्ना प्रकृति रष्टथा। ये प्रकृति के जो 8 पदार्थ हैं, वो क्रम से इनका निर्माण होता है सृष्टि में, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे विस्तार में, लेकिन संक्षेप में इतना कहना काफी है आज कि हर एक पदार्थ से जब उसका मिश्रण किसी दूसरे चीज से होता है, फिर काल का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है और भगवान की दृष्टि पड़ जाती है, तो फिर उसका परिवर्तन एक दूसरे वस्तु में होता है। फिर वो पहले और दूसरे वस्तु के मिश्रण से जो और कोई वस्तु मिल जाता है और भगवान की दृष्टि और काल, तो और एक वस्तु आ जाता है। इस प्रकार से महत्त्व से लेकर अहंकार, अहंकार से लेकर बुद्धि, बुद्धि से लेकर मन, फिर मन से खम या आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे पदार्थ बनते हैं क्रम से, एक के बाद एक के बाद एक। और हर एक समय भगवान की दृष्टि और काल, इनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि आचार्य उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति भोजन पका रहा है तो कितने चीजों की आवश्यकता होती है, आप बता सकते हैं? अभी आपको प्रसाद लेना है तो कितने चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीजें जरूरी है? ठीक है, समझिए कि भोग नहीं चढ़ाना है, साधारण केवल भोजन को तैयार करने के लिए, भोग के पहले क्या क्या चाहिए? पहली बात, चाहिए ना, क्या पकाएंगे क्या आप? कोई चावल चाहिए, कोई गेहूं चाहिए, कोई सब्जी चाहिए, पदार्थ चाहिए। तो एक पदार्थ आए हाथ में, फिर और क्या चाहिए? हा? वो भी पदार्थ में आ गया, पानी। अभी आपने अग्नि में डाल दिया, अपना बर्तन में डाल दिया, बर्तन अग्नि के ऊपर रख दिया, एक सेकंड में तैयार हो गया खीर। समय, समय चाहिए, काल। ऐसा नहीं कि पदार्थ आ गए, चलो आ गए हम एक क्षण में एकदम पराठा चपाती दाल पुलाव सब तैयार हो गया। समय लगता है, किसी भी चीज का सृजन करना हो समय लगता है। काल नहीं हो तो किसी चीज का सृजन नहीं हो सकता। भक्ति का उदय भी होना है, काल समय लगता है। तो ठीक है, पदार्थ आ गए, बर्तन आ गया और अग्नि आ गई, काल आ गया, और क्या चाहिए? बनाने वाला चाहिए ना। बनाने वाला नहीं होगा तो पदार्थ के अपने आप वो बर्तन में बैठ जाएंगे। और बनाने वाला क्या करता है? बनाने वाले की भूमिका क्या होती है? वो देखता है कितना पदार्थ कब डालना चाहिए, कौन सा पदार्थ चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, और उसका मिश्रण किस तरह से करना चाहिए, और कितना समय तक उसको अग्नि के ऊपर रखना चाहिए। और मिश्रण के समय क्या करता है? घुमाता है ना, फिर देखता है हाँ ठीक है कि नहीं है, परीक्षा करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे से कोई पदार्थ बनता है। उसी प्रकार से सृष्टि के सारे जो पदार्थ हैं क्रम से ऐसे बने हैं। कल्पना कीजिए अपने मन में एक दृष्टांत कि एक विशाल पात्र है और इस विशाल पात्र में बहुत सारे चीजें हैं और उसमें भगवान पिला रहे हैं, धीरे मसाला डाल रहे हैं, फिर नमक डाल रहे हैं, कुछ और डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं, फिर भगवान हिला रहे हैं और इससे सब सारे सृष्टि का सृजन हुआ है। तो इसलिए प्रकृति ये दो कार्य करती है, एक तो बर्तन बन जाती है और दूसरा वो पदार्थ भी बन जाते हैं। बर्तन के बिना पदार्थ कहां जाएंगे? आप जो सब्जी है वो सीधे अग्नि के ऊपर डालेंगे? नहीं, बर्तन चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक मां होती है, उसको गर्भवती होने के पहले वो दो प्रकार के कार्य कर सकती है। एक तो वो स्थान देती है बच्चे के लिए अपने गर्भ में, पात्र। अपना गर्भ, जो मां का गर्भ होता है वो एक पात्र के समान है जिसमें बच्चा बड़ा हो सकता है। और दूसरी बात, उसके शरीर के भीतर जो पदार्थ हैं उनसे बच्चे का शरीर बनता है। सही बात है ना, बच्चे का विकास होता है ना, शरीर का विकास होता है मां के गर्भ में। तो वो शरीर कहां से बनता है बच्चे का? मां के शरीर के भीतर जो पदार्थ है उनसे बनता है। तो मां दो तरह से बच्चे के निर्माण में कार्य करती है, एक पात्र बनती है, उसका गर्भ एक पात्र बनता है, और दूसरा बच्चे के शरीर को बनाने के लिए पदार्थ जो आवश्यक है वो भी मां देती है। उसी प्रकार से प्रकृति दो तरह के कार्य करती है। प्रकृति एक पात्र के समान है और वो पदार्थ भी देती है। और फिर भगवान महाविष्णु केवल अपने दृष्टि से गर्भवती कर देते हैं प्रकृति को, और अपने दृष्टि से हरेक स्तर पे वो जो घुमाते रहते हैं और नाना प्रकार के मिश्रण करते रहते हैं और एक पदार्थ से दूसरा, दूसरा से तीसरा बनता रहता है, और इस प्रकार से सारे आठ पदार्थ बनते हैं। फिर ब्रह्मांड बन जाते हैं और ब्रह्मांडों में से फिर जब गर्भवदशायी विष्णु प्रवेश करते हैं, फिर ब्रह्मा जी बनते हैं, फिर ब्रह्मा जी आगे चल के देवताओं को, मनुष्यों को और अन्य योनियों को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो प्रकृति क्या है? निमित्त कारण है, निकटवर्ती कारण है, लेकिन भगवान सुदूर कारण है, मूल कारण है, पीछे के कारण है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि भगवान की भूमिका हर जगह है, हर सृष्टि में क्योंकि काल भी भगवान की शक्ति ही है। भगवान ही सृष्टि को निर्माण करते हैं, भगवान ही सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान ही सृष्टि का संहार करते हैं। जिस तरह से एक मकड़ी होती है, मकड़ी जानते हैं ना, स्पाइडर, वो अपना जाल फैला देती है, जाल फैलाने के बाद थोड़े समय के लिए वो जाल रहता है, अपना कार्य समाप्त हो जाता है, जब थोड़े मक्खी वगैरह उसमें अटक जाते हैं, और फिर मकड़ी क्या करती है, जाल को अपने आप में समेट लेती है, और जाल के साथ साथ में जो मक्खी वगैरह जंतु फंसे हुए होंगे उनको भी समेट लेती है अपने अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। वो भगवान का जाल है, इसमें माया जाल में हम सब बद्ध जीव फंस गए हैं। जब मक्खी कोई मकड़ी के जाल में फंस जाती है, आपने कभी देखा है वो क्या करती है, मक्खी क्या करती है, फड़फड़ाती है, क्यों, बाहर निकलने के लिए। आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ लीजिए, वो क्या करेगा, मुक्त होने के लिए प्रयास करेगा, क्यों। किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को आप पकड़िए तो वो अपने आप को छोड़ने के लिए क्यों प्रयत्न करता है, वो क्यों नहीं कहता बांधो, ठीक है बांधो, अच्छी बात है, हम बंधु में बैठ जाएंगे, क्यों। उसका प्रवृत्ति है कि वो मुक्त रहे, उसका स्वभाव है कि वो मुक्त अवस्था में रहे। बंधे अवस्था में रहना ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हमारा जो स्वरूप है वो मुक्त अवस्था में रहना है। इसलिए कोई भी अगर बंधा जाता है तो वो मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है। इसलिए ये जो मक्खी है वो भी संघर्ष करती है, लेकिन संघर्ष करते करते क्या होता है, आपने देखा है कभी, हाँ, उलझती जाती है। बल्कि जितना ज्यादा वो मक्खी वहां संघर्ष करती है उतना ज्यादा वो बांध ली जाती है, बंध जाती है, और मकड़ी क्या करती है, देखती रहती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मकड़ी ने केवल जाल फैला लिया, अब आराम से बैठ जाती है और जाल बाकी का काम कर लेती है, मक्खी है बल्कि अपना काम कर लेती है। और फिर बाद में आके जब जाल को समेट लेना होता अपने आप में, फिर मकड़ी सब सारे जंतुओं को, मक्खियों को, जाल को अपने आप में समेट लेती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो इसमें सारे जीव आते हैं, जीवों को माया पकड़ लेती है, निकटस्थ माया तय झपटिया धरे। जब जीव बाहर मुख जीव होना भोगवंशा करे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जब जीव बहिर्मुख हो जाता है, बहिर्मुख मतलब भगवान से विमुख हो जाता है और भोगवांछा करे, भोग करने की इच्छा करता है, तो माया क्या करती है, माया तो पास में खड़ी है, निकटस्थ माया तारे झपट या धोरे, झपट के उसको पकड़ लेती है माया जाल में। तो इसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, हम भी थोड़ी लापरवाही करें, इधर उधर फिसल जाए, माया खड़ी है सामने, भट करके हमको पकड़ लेगी, माया के प्रभाव में हमें डाल देगी, भक्ति से दूर कर लेगी। इसलिए भक्त को चाहिए कि हमेशा होशियार रहे, सावधान रहे। तो इस प्रकार से जीव बंध जाता है माया के जाल में, और जब बंध जाता है तो क्या करता है, मक्खी की तरह फड़फड़ाने लगता है, संघर्ष करता है। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भगवान का अंश है सनातन, लेकिन अब उसकी अवस्था क्या है, अपने मन और इंद्रियों से प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। प्रकृति स्थानि कर्षति, कर्षति कर्षण मतलब संघर्ष। क्यों करता है, क्योंकि वो अपने स्वामी को, अपने प्रभु को भूल गया है, क्योंकि उसने भगवान का शरण नहीं लिया है। जब भगवान का शरण लेते हैं तो संघर्ष बंद हो जाता है। थोड़े दिन पहले यहां से उडुपी के लिए यात्रा निकली थी, कई भक्त आए थे, वहां उडुपी के पास जो समंदर है उसमें भी कई भक्तों ने स्नान किया मलपे में। तो समंदर में स्नान करते समय सभी लोगों को बहुत आनंद आ रहा था। जब लहरें आती थी तो लहरें के सामने खड़े हो जाते, लहर उनको उड़ा के ले जाते थे, है ना। आपने से देखा कि लहर इतने कोई बड़े नहीं थे, अगर अंदर जाते तो लहर कितने बड़े होते, लेकिन यहां पर समुद्र के तट पर लहरें काफी छोटी थीं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कई भक्त खड़े हो रहे थे सामने, सामना करने के लिए लहर का। दो पैर ऐसे रख दिया तो हम रहेंगे ऐसे, सामना करेंगे, सीना तान के खड़े थे, लेकिन लहर आ गई, क्या हो गया, उड़ के चले गए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये लहर से बचना है तो उसको क्या करना चाहिए, हा? नहीं, पीट करेंगे तो और तो उड़ जाएंगे, नीचे जाना चाहिए, जल का आश्रय लेना चाहिए। आप खड़े रहकर सामना करेंगे, उड़ जाएंगे। माया का खड़ा रहकर सामना करेंगे, माया मैं आपको हरा सकता हूं, तो माया फट करके हमको उड़ा देगी, है ना। जैसे आदमी मच्छर को मारता है, वैसे माया हमको फट करके मार देगी, हम कुछ भी नहीं है माया के सामने। लेकिन जब आश्रय लेंगे जल का, तो फिर लहर हमारे ऊपर से चले जाएगी, फिर हम जहां है वहीं पर रहेंगे। बड़ा बड़ा हाथी, जितना भी बड़ा हाथी हो, उसको बीच में डाल दीजिए सागर के, वो क्या लहरों का सामना कर पाएगा, वो तो उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं है बड़ा हाथी सागर में। सागर की शक्ति क्या है और हाथी की शक्ति क्या है, हमारे तुलना से हाथी की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन सागर की तुलना से हाथी की शक्ति तो कुछ भी नहीं है। लहर तो उसे उड़ा ले जाएंगे, लेकिन छोटी सी मच्छी है वो उड़ नहीं जाती, वहीं की वहीं रहती है। हमने देखा जब वहां से लौटते समय एक स्थान में मुर्डेश्वर में गए थे, तो बाकी भक्त जब इधर उधर देखने गए, हम गाड़ी में ही बैठे थे, और वहां पे एक अमुक प्रकार के मच्छी है जिनको डॉल्फिन कहते हैं। ये डॉल्फिन हमने तीन चार देखे समुद्र में, दूर से बड़े पहाड़ के ऊपर बैठ के हुए देखे, और हमने नोट किया कि ये लोग तैर रहे हैं, लेकिन ठीक उसी जगह में तैर रहे हैं, हिले नहीं। जो मछली जिस स्थान में थी 15 मिनट उसी स्थान में रही, और दिन भर भी शायद उसी स्थान में रह सकते हैं। लेकिन जब भक्त लोग समुद्र में स्नान करने गए, गए एक जगह, जब स्नान समाप्त हो गया तो वहां थे बहुत दूर। कैसे, पानी के प्रवाह से वो बहते गए बहते गए बहते गए उस तरफ। कपड़े यहां पर पड़े थे, कपड़े यहां छोड़कर समुद्र में वहां गए, और फिर बहते बहते कहां निकल गए, कितना चल के उनको आना पड़ा अपने कपड़ों के पास। तो उन मच्छियों की तुलना से तो हमारा शरीर कितना बड़ा है, लेकिन वो मच्छी एक स्थान में रह सकते हैं पानी में, हम लोग नहीं रह सकते। क्यों, हाथी नहीं रह सकता, हम लोग नहीं रह सकते, जहाज नहीं रह सकता, लेकिन छोटी मच्छी रह सकती है। क्यों, क्योंकि मच्छी ने सागर का आश्रय लिया है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग प्रकृति का, माया का के प्रति संघर्ष करना चाहते हैं, प्रकृति स्थानिक कर्षति, तो माया तो उनको उड़ा के ले जाती है, बारंबार उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में इधर उधर भटकना पड़ता है। लेकिन जो माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, तो उनके लिए संघर्ष बंद हो जाता है। तो यह बहुत सुंदर बात है। इसलिए जो बद्ध जीव होते हैं, जो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, वो केवल संघर्ष करते रहते हैं इस प्रकृति के भीतर, और जितना ज्यादा संघर्ष करते हैं उनका बंधन क्या होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। जब तक कि कोई मुक्त व्यक्ति आके उनको छुड़ाए नहीं, वो छूट नहीं पाएंगे। इस प्रकार से सारे बद्ध जीव इस जन्म मृत्यु के चक्कर में अटके हुए पड़े हैं। केवल भगवान या भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, वही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि इस सारे सृष्टि में भगवान ही सब कारणों के कारण है, मूल कारण सबके भगवान है, वही सब चीजों का निर्माण करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, सर्व सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जान लो, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षय, जब सारे ब्रह्मांड का समय समाप्त हो जाता है तो फिर सर्वभूतानि, सारे जो प्राणी हैं, सारी सृष्टि है, मुझ में प्रवेश करती है कल्पक्षय। और उसके बाद में पुनः तानी कल्पादौ विसृजामि हम, और फिर जब फिर से ब्रह्मांड का निर्माण करने का समय हो जाता है, सृजन करने का समय हो जाता है, फिर मैं सृष्टि करता हूं। जब ब्रह्मांड का अंत हो जाता है तो मैं सबको मेरे अंदर ले लेता हूं, मेरे प्रकृति में सब लोग प्रवेश कर लेते हैं, सारे प्राणी, सारी भौतिक प्रकृति, सब कुछ मुझ में आ जाती है। और जब सृष्टि का निर्माण करने का समय आ जाता है तो फिर से पुनस्तानि विसृजामि अहम्, फिर मैं इसको प्रकट कर देता हूं। और आगे चल के भी भगवान बताते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमम कृष्णम प्रकृते रवशम वशात। वो कहते हैं कि इस प्रकार से पुनः पुनः बार बार मैं सृष्टि का सृजन करता हूं, संहार करता हूं, सृजन करता हूं, संहार करता हूं, और ये बार बार ये चक्र चलता रहता है। लेकिन इतना सब होते हुए भगवान क्या कहते हैं, नच माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं इसमें अटकता नहीं हूं। भगवान नौवे अध्याय में कहते हैं, नच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान बोलते हैं, नच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, ये जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, सृष्टि का सृजन, फिर सृष्टि का संहार, ये बारंबार मैं करता रहता हूं, लेकिन मैं बंद नहीं जाता इन कार्यों से। नच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, हम देखते हैं कि हम कोई छोटे भी चीज का निर्माण करते हैं, छोटा सा कारखाना बनाते हैं, छोटा सा परिवार हम लेते हैं, कितने बंद जाते हैं हम उस कार्य में, कितना उलझ जाते हैं। आप सबको अनुभव है, आप में से जो गृहस्थ आश्रम में है, ये छोटे से परिवार में का निर्माण जब हो जाता है कितना उलझना पड़ता है उसमें, कितनी छोटी छोटी बातें जो संभालना पड़ता है। छोटा सा दुकान खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, हर एक चीज में। अब यहां पर मंदिर है तो मंदिर के कार्यों में ये सब कितने उलझ जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हालांकि मैं इतने सारे ब्रह्मांडों का सृजन करता हूं, फिर संहार करता हूं, नच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, मैं कभी बंद नहीं जाता हूं इन कार्यों से। उदासीनवद आसीनम, मैं उदासीन हूं, उदासीन मतलब बिल्कुल निरासक्त हूं मैं। असक्तम तेषु कर्मसु, मैं निरासक्त रहता हूं, मैं इसे बंद नहीं जाता, इतना सब करते हुए भी मैं निरासक्त रहता हूं। भगवान को ये तीन गुण प्रकृति के बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि तीन गुणों को बनाने वाले ही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये है भगवान का स्थान। और जीवों का स्थान क्या है, कि वो प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, और इन बद्ध जीवों में से जो लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं, भगवान उनको मुक्त करते हैं और उनके धाम में ले जाते हैं। इसलिए नारद मुनि प्रचेताओं को बता रहे हैं कि सीधे डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग जाओ, इस सृष्टि के बंधन में पड़ो मत। अगर भगवान की सेवा करोगे तो भगवान के समान तुम मुक्त हो जाओगे, भगवान के समान तुम्हें आध्यात्मिक गुण मिल जाएंगे, मात्रा में नहीं गुण में। इस प्रकार से तुम हमेशा भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हो। इस तरह नारद मुनि ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महत्तत्व आध्यात्मिक और भौतिक जगत का तट है, बीच का, और महत्तत्व से फिर सारी भौतिक सृष्टियों का निर्माण होता है, सारे भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है, ये बीच का है, इसको महत तत्व कहते हैं। और कोई प्रश्न ये है कि नारद मुनि ने रचयिताओं को उपदेश दिया था कि अब डायरेक्ट सीधे भगवान की सेवा में लग जाओ, लेकिन क्या हम भगवान की सीधे सेवा करने के लिए योग्य हैं? हम इतने शुद्ध नहीं हैं। नारद मुनि जब कह रहे हैं कि तुम सीधे भगवान की सेवा करो, इसका मतलब ये है कि उधर उधर अपना समय बर्बाद नहीं करो। ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये योग, वो योग, सिर पे खड़ा होना, नाक को दबाना जमीन में, गंगा में खड़े रहना, सर पे खड़े हो जाना, और इसका अध्ययन करना, उसका पाठ करना, व्याकरण से तोड़ मोड़ करना, ये सब चीजें छोड़ दिए, अन्य जो पथ हैं वो छोड़ दो, भक्ति मार्ग को स्वीकार करो। ये कहने का उद्देश्य है पहली बात नारद मुनि की। और दूसरी बात, यहां सारे जो जीव हैं वो तो बद्ध हैं, अशुद्ध हैं, तो वो शुद्ध कैसे हो सकते हैं? भक्ति करने से ही शुद्ध हो सकते हैं। तो शुरुआत में तो कोई शुद्ध भक्त नहीं होता, सेवा करके ही तो शुद्ध हो जाता है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद में ही, 5 साल के बाद में कोई व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है। शुरुआत से वो कहे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, कैसे हो सकता है? ठीक उसी प्रकार से हम अभी शुद्ध नहीं हैं, लेकिन भगवान की सेवा करते करते हम शुद्ध हो जाते हैं। सेवन मुखे ही जो भादो स्वयं एव स्फुरत क्यदह, सेवा करते करते भगवान की भक्ति की स्फूर्ति हो जाएगी, शुद्धता आ जाएगी धीरे धीरे से। सेवा करना ही ये शुद्धता प्राप्त करने का मार्ग है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी के लक्षण, उसके पास दवाइयां हैं, सब ठीक ठाक, डॉक्टर ने सही इलाज कराया है, मतलब दवाइयां ठीक दिए हैं और अच्छी तरह से बीमारी को पहचान लिया है, फिर भी मरीज की जो बीमारी दूर नहीं होती है, इसका क्या कारण है? ठीक तरह से वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक तरह से दवाई नहीं ले रहा है, और जो भी पथ्य है, जो भी और विधि विधान नियम है, उनका पालन ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए तो उसकी बीमारी नहीं जा रही है। अगर डॉक्टर ने जो भी उसे बताया है, ये करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, अगर सब कुछ करेगा, जो बीमारी के लक्षण हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ये दुर्गुण क्या है? हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है या अनर्थ है, वो क्या है? वो केवल हमारे बद्ध अवस्था के, हमारे भगवान के विस्मृति के लक्षण है, और हमारी मूल बीमारी है कि हम भगवान को भूल चुके हैं, हम भगवान से स्वतंत्र होकर यहां भोग करना चाहते हैं, और इसके लिए दवाई भी हमारे पास है, हमारे जो भी विधि विधान है। तो अगर दुर्गुण नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमारे विधि विधानों के पालन में। हम अच्छी तरह से भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, हम शायद वैष्णव अपराध कर रहे हैं, शायद हम ठीक तरह से श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, कितने सारे नियम हमारे पथ में हैं। अगर हम ठीक से नियम का पालन करेंगे